नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।